أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اور کافی فون وغیرہ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ دین پر استقامت نہیں مل رہی، فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، فجر کی نماز نہیں ہو رہی، نفس کنٹرول میں نہیں آ رہا جس حساب سے نفس کنٹرول میں آنا چاہیے، کیا معاملات ہیں؟ تو کئی چیزیں ہوتی ہوں گی. سب سے پہلی چیز جو معمول اور مددگار بنے گی اس چیز میں، تو صحبت اہل اللہ میں جانے کا آدمی اہتمام کرے. تو یہ خالی ارادوں سے یا قوت ارادی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جیسے کسی کو بخار چڑھ جائے، اب وہ قوت ارادی سے بیٹھا رہے کہ بخار اتر جائے، تو خالی قوت ارادی سے نہیں ہوتا. علاج کرانا بھی سنت ہے، یعنی وسیلہ اختیار کرنا. شفا تو اللہ دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا، دوائی نہیں دے گی. شفا تو اللہ پاک دے گی. حدیث میں بار کرنے کے دوائی بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. تو اللہ کا حکم ہوتا ہے دوا میں، تو وہ شفا کا ذریعہ بنتی ہے وہ دوا، لیکن وسیلے کو اختیار کرنا ہے، سبب کو اختیار کرنا ہے. یہی سنت اللہ چلتی جا رہی ہے ہر چیز کے بارے میں. تو دین پر استقامت کے لیے اللہ نے حکم دیا، قوم اور صادقین اور رحمان و فصل بھی ہے. خبیر اکثر بیانات میں سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، اور اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ ولن تجد له ولیا مرشدا، کہ جس کو ہم راہ سے بھٹکا دیں اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پاؤ گے. جس کو ہم برباد کر دیں، جس کو ہم راہ سے بھٹکا دیں، بڑے سے بڑا کوئی ولی آ جائے، بڑے سے بڑا مرشد آ جائے، تو تم اس کو کبھی ہدایت پر نہیں پاؤ گے جس کو ہم بھٹکا دیں. تو پتہ چلا یہاں سے کہ ولی اور مرشد اصلاح کے ہدایت کے ذرائع ہوتے ہیں، ذریعے ہوتے ہیں. ہدایت تو اللہ دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، مثلا سونا سونے کی کان سے، کوئلہ کوئلے کی کان سے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل حدیث شریف کہ التقوی قلوب العارفین، تقوی کی کانیں جو ہے عارفین کے قلوب میں ان کے دل ہیں، یعنی ان کی صحبت میں جاؤ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا. آسان لفظ دیکھیے، آج المیہ امت مسلمہ کا ہمارا یہی ہے کہ بہت سے لوگ تو دین کی طرف نہیں آتے، نماز روزے کی طرف نہیں آتے، اور کچھ اگر آتے بھی ہیں تو بس وہ چند اعمال تک محدود ہو جاتے ہیں. گناہوں کو چھوڑنا وہ تو بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے ہم پورے دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور دن بہ دن ہم پوری دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. وجہ کیا کہ سنت شریعت کو چھوڑ دیا، تقوی کو چھوڑ دیا، حج عمرے کو نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ حج عمرے تو بہت چلنا ہے، کرنے بھی چاہیے. ہر سال ایکسٹینشن، ہر دو تین سال میں ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے، 12 مہینے ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے حرم شریف کی. اتنے ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑھ رہے ہیں وہاں پر، پوری دنیا سے مسلمانوں کا ایک سیلاب امٹ کر آتا ہے. لیکن تقوی کی طرف دیکھیں، گناہوں کو دیکھیں تو اس پہ ہمیں شرم آ جائے گی. گناہ چھوڑنے پہ لوگ تیار نہیں ہیں. آپ ہر سال حج کروا لیں، ہر 6 مہینے میں عمرہ کروا لیں، لوگ تیار ہیں. تو پھر اللہ کو ایسے مسلمان نہیں چاہیے، پھر کام نہیں بنے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ کہلاتے ہیں جھوٹ مکاریاں، وہ پھر کام نہیں بنے گا، پھر پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، بلائیں ختم نہیں ہوں گی، مصیبتیں دور نہیں ہوں گی. ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں آتے، رحمان بھی خوش شیطان بھی خوش. ہم رحمانی کام بھی کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، مبارک ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے، خطوات شیطان کے اوپر بھی چل رہے ہیں. موبائل اٹھا لیا، اس کو عورتیں لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، موسیقی دیکھ رہے ہیں، گانا بجانا دیکھ رہے ہیں. سالی بھابھی سے کوئی نظروں کی حفاظت نہیں ہے، کزنوں سے چلتے پھرتے نامحرم لڑکیوں سے کوئی نظروں کی حفاظت نہیں ہے، خوب گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہے، لعن النافرہ منظور ہے. اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے، اور اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. تو بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی میٹھا میٹھا ہپا کڑوا کڑوا تھوٹو. میٹھا میٹھا تو ہپا کھا جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب، دین کی جو آسان چیزیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جہاں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، جو گناہ کی جو چیزیں ہیں وہ چھوڑنے میں تیار نہیں ہے. بحث کرتے ہیں اکثر لوگ، دین کی مخالفت کے اوپر چلتے ہیں، مخالفت میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تو بے دین لوگوں کو چھیڑیں گے، ابھی تو دیندار ہم لوگوں کا بڑا برا حال. اکثر مثال دیتا رہتا ہوں، کبھی رات کو جائیں 10-11-12 بجے یہ بینکویٹ سفیشن پہ بنے اور لاؤنج میں ایک چکر لا کے آئے، دیکھیں ذرا میرے اور آپ کے ہولیوں میں کتنے بادشاہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو. عورتیں مردوں کے ساتھ ایک مخلوط ماحول ہوگا، مووی تصاویر بن رہی ہوں گی، فنکشن ہو رہا ہوگا، گانے بجانے بج رہے ہوں گے، وہ حاجی صاحب مولوی صاحب بیٹھے ہوں گے. وہ ये कोई अच्छी बात है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी जगह जहां अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हो मत जाओ, और नाजायज कामों में मखलूक की अतात नहीं करनी, अल्लाह की अतात करनी है। अलग अलग करके तफसीलन समझा दी कि अल्लाह का हुक्म है कि ये काम मत करना, गुनाह, लेकिन मखलूक कह रही है काम करना है। अब टकराव हुआ खालिक और मखलूक का, तो उस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें मखलूक की बात मान, मखलूक की बात नहीं माननी, अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, नफली चीज नहीं है कि यार कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो कोई मसला नहीं। तो इसमें पूरे पूरी जिंदगी लोगों की इस चक्कर में गुजर गई कि हमारी मखलूक हमसे राजी हो जाए। अल्लाह का क्या, अल्लाह नाराज हो तो हो, 100 बार हो, 50 बार हो, लाखों बार हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फला मेरा रिश्तेदार जो है वो कोई बुरा ना मान जाए। जब लाश निकलती, जब रूह निकलती है ना, लाश की शक्ल में आदमी आ जाता है, तो जिन मखलूक को हमने राजी किया था ना, अल्लाह को नाराज करके वो फुट्टे लगा रहे होते हैं दूर खड़े। तफसीन के बाद क्या कहते हैं, यार ये डिश में से मेरा बिरयानी की बोटियां खत्म हो गई है, मेरा बोटियां तो लाओ उसमें। तो कहते हैं ना, पेशाब भी नहीं करता कब्र पे आके। तो इतना मखलूक के पीछे आदमी पागल ना हो कि अपनी मौत, कब्र, हशर सब भूल जाए। मौत, कब्र, हशर तो बहुत बाद में, दुनिया में अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आ जाए, कोई बला आ जाए, तो मैं देखता हूँ कौन सा अपना प्यारा आता है, सब पत्ती गली से निकल जाते हैं, सब छोड़ के भाग जाते हैं। कोरोना आया था ना, सब भूल गए क्या हुआ था, भूल जाता ना ये क्या है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाया गया, दिन रात को उलटते पलटते रहते हैं लोगों की आजमाइश के वास्ते। ये जो बुरा वक्त जो अल्लाह ने भेजा था, याद है या याद नहीं, मुझे याद है, अक्सर बताता रहता हूँ मैं। कभी अपने घर में जो है कुंडी लगाते हुए डरता था, हाथ धोता था, हैंड ग्लव्स पहनता था, फिर उसके बाद कुंडी लगाता था कि कोरोना में जो ना वो ग्रिल में से निकल के कुंडी में से मेरे हाथ में ना लग जाए। साइको जो हो गए थे, ऑफिस की लिफ्ट में जब मैं जाता था तो बटन को पुश करते हुए डर लगता था, रुमाल लेके उंगली के ऊपर रुमाल रख के फिर बटन के ऊपर हाथ लगाता था कि कोरोना लग जाए। लोग मुसाफा नहीं करते थे, नहीं नहीं मुसाफा नहीं, दूर दूर बस सलाम कर लो, हाथ मत लगाओ। लोग जनाजों में शिरकत नहीं करते थे, याद है वो वक्त, नहीं आप सब भूल गए, याद है ना भाई, या नहीं है। लोग जनाजों में नहीं जाते थे, क्या वो मरा ना कोरोना में बंदा मरा है, तो उसको जरासीम डॉक्टर कह रहे हैं वो चिपट जाएंगे आप लोग का। तो चार कंधे नहीं मिलते थे, बाप ऐसे वाकयात हुए कि लोग हाथ जोड़ रहे अल्लाह के वास्ते, कम से कम चार लोग आ जाए, कम से कम क्योंकि जनाबों को उठेगा उसके लिए चार कंधे चाहिए, चार कंधे नहीं थे उस वक्त। सारे प्यारे भाग गए थे छोड़ छाड़ के, कोई नहीं आ रहा था, सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी। तो बहुत वाकयात थे, एक लड़की थी 21 साल की, शादी भी नहीं हुई थी, इकलौती बेटी, माँ बाप की लाडली चाहिए थी, कोरोना हो गया, उसको जिना हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसके बाद माँ बाप नहीं गया उसको देखने। डॉक्टर्स ने फोन किया कि आपकी बच्ची की बहुत बुरी हालत है, आके देख लो तो सही। माँ बाप ने कहा भाई ये बस आप देख लो, जो करना है, हम नहीं आ सकते, कोरोना लग जाएगा। देखा बहुत बुरी कंडीशन है, बचना मुश्किल नहीं, उसका कोई वक्त नहीं, जो पेमेंट है अल्लाह ने बहुत दिया, जो पेमेंट हम कर देंगे, इंतकाल हो जाए तो दफन कर देना। इंतकाल हो गया और हॉस्पिटल वाले नमाज जनाजा पढ़ाई, तदफीन भी हो गई, लेकिन माँ बाप ने शिरकत नहीं करी बेटी के जनाजे में, सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी। ऐसा बेटी के पास जाए उसकी जो जरासीम हमें ना लग जाए। कितने वाकयात थे कि दादा रो रहे तड़प रहे घर में, बेटे के पोते के चक्कर में, पोतों से मिला दो, बेटे बहू कह रहे नहीं अब्बा माजरत चाहते हैं, आपको कोरोना हुआ है, आप बच्चा अगर आपके पास भेजिए उसको ना लग जाए, तो घर में ही मुकैद कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया और दरवाजे में बंद, बस नॉक किया, खाना पानी दे दिया, जो मांगा दे दिया, अंदर रहना बाहर नहीं आना, नहीं तो कोरोना लग जाएगा। वो बच्चा बेचारा बुढ़ा दादा, तो पूरी जिंदगी जिसने पूरे अपने घर वालों को पाला पोसा, साबिल के बीमार हुआ तो फिर एड़ियां रगड़ के तड़प तड़प के मर गया वो। तो ये एक थोड़ा सा एक नक्शा दिखाया है, नक्शा दुनिया का, ये मखलूक का, ये है सारे प्यारे। ये जो हजरत के अशआर थे ना, ये सुनने वाले थे, कोई तुझसे बढ़ के प्यारा नहीं है, तेरे सिवा कोई हमारा नहीं है, अल्लाह से प्यारा कोई नहीं है, क्योंकि बला में, मुसीबत में, हर चीज में वही तो काम आता है, कोई आ सकता है काम। अगर कोई हमारा मुखलिस भी हो, मोहब्बत करने वाला भी हो, चाहे भी हमारा भला करना, नहीं कर सकता, क्योंकि कमजोर है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। किसी को अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए, उनको उठा लेंगे, किसी को कैंसर हो जाए अल्लाह ना करे, तो क्या कोई कितना ही चाहने वाला हो क्या कोई करेगा, सब ही कहेंगे दुआ करना है अल्लाह आपको शिफा दे बस, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। डॉक्टर भी दवाई देगी, कहते भाई मजबूर है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, दवाइयां वगैरह नहीं, ट्रीटमेंट हमने कर दिया, आगे तो सबकी रब की मर्जी, दुआ करें बस। इसलिए वह फरमाते थे बस जब कोई बुरा वक्त आता है तो फिर पूछो लोगों से अल्लाह की कदर। जब आईसीयू में बंदा होता है ना, ये वेंट के ऊपर होता है, उस वक्त फिर पूछे आदमी, दिल से एक ही आवाज निकलती है, अल्लाह बचा ले इस मुसीबत से, अल्लाह भी बचा ले। तो होता है क्या, बुरा वक्त तकलीफ का वक्त पुकारने के लिए हम अल्लाह के लिए रखते हैं, अच्छा वक्त नफ्स और शैतान लोगों के लिए रखते हैं, मखलूक के लिए रखते हैं। अल्लाह ऐश करा रहा है, पैसा दे रहा है, दौलत दे रहा है, इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, स्टैंडर्ड दे रहा है, महबूब भाव भगत अल्लाह पाक हमारी करवा रहे हैं, सारे मजे अल्लाह पाक करा रहे हैं। उसका नतीजा आखिर में क्या निकलता है, वही बात, कोई हमारे साथ एहसान करे, भलाई करे, हमें खिलाए पिलाए, ऐश कराए, हमें किसी मुकाम पे पहुंचाए, तो हमारा दोस्त होकर जानने वाला आखिर में छुरी उठाए उसकी कमर में घोंप दे, तो दुनिया क्या बोलेगी, बहुत नमक हराम बेवफा शख्स है, बताओ उसने अपने मोहसिन की छुरी मार दी, इतना उसको बुरा बुरा लोग कहेंगे, काबिल नफरत समझेंगे। ये मिसाल तो फोन में आ जाती है, लेकिन भाई हम भी तो अल्लाह की सुबह शाम नाफरमानियां कर रहे हैं, उसी के टुकड़ों पर पढ़ रहे हैं, उसी की याशी के ऊपर हम चल रहे हैं, उसी के मामला को लेके चल रहे हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत कहाँ है, अल्लाह से सिर्फ जन्नत जहन्नम का रिश्ता थोड़ी है हमारा, कि नेक अमाल करोगे तो जन्नत, गुनाह करोगे तो जहन्नम। सब अक्सर मुसलमानों ने ये समझा हुआ है बस, अरे भाई अल्लाह से इश्क भी तो किया जाता है, मोहब्बत भी तो की जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में ऐलान फरमा रहे हैं, والذين آمنوا اشد حب لله اشد محبت مؤمنین, اشد محبت کہتے ہیں عشق کو, شدید سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے اشد بولتے ہیں اس کو عربی گرامر کے حساب سے, یہ اس کی صحیح معنی میں یہ ہوتا ہے کہ اشد محبت اور عشق مؤمنین صرف اللہ سے کرتے ہیں, عشق کی بات کرنا ہے اللہ پاک, کہ جب میرا حکم آتا ہے تو لوگ اپنی جان سے گزر جاتے ہیں لیکن میری نافرمانی نہیں کرتے, جو اللہ کے جو سچے عاشقین ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, میرا بندہ قلیل بہت مختصر ہوتے ہیں, میرا بندہ خاص بہت قلیل ہوتے ہیں, مختصر ہوتے ہیں, جو میرے خاص بندے ہیں, یعنی جو میری بات کو مان کے چلتے ہیں. اب شیطانی معاملات ہیں ابلیس کے, جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے اللہ نے فرمایا تھا, سب کو کہا تھا, فرشتوں کو اور تمام مخلوقات کو سب نے سجدہ کیا تھا, وہ تعظیمی سجدہ تھا, معبودیت کا سجدہ نہیں تھا, پہلے تھا جائز, لیکن اب کوئی تعظیمی وغیرہ سجدہ کسی کو نہیں ہے, یہ اس وقت کی بات ہے. تو ابلیس مشہور واقعات میں سے لڑ پڑا تھا اللہ سے, جھگڑا کرنے لگا, اللہ آپ یہ گندی مٹی سے انسان کو پیدا آپ نے کیا ہے, گارے کی مٹی سے, اور میں آگ ہوں اور آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے, تکبر اکڑ دکھائی تھی, پتہ اللہ تکبر جو مرض ہوتا ہے اپنی بڑائی کا, یہ سب سے پہلے ابلیس لعین کو ہوا تھا آسمانوں میں, کائنات کا پہلا گناہ تکبر, جس کی وجہ سے مردود ہوا. پتہ چلا تکبر رکھنے والی جو صفت جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ پھر شیطان کے ذریات کے اثرات ہوتے ہیں کچھ ان میں, تو تکبر سے آدمی بچے, اپنی بڑائی نہ ہو کسی بھی معاملے میں. پھر اللہ نے فرمایا تھا, جا تو یہاں پر تکبر دکھاتا ہے آسمانوں میں لگے, نکل یہاں سے, تو رجیم مردود ہے. پھر اس نے کہا تھا, اللہ مہلت دے تیرے بندے کو بہکاؤں, تو اللہ نے فرمایا تھا, جا تجھے مہلت دی قیامت کے دن تک. لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دی, لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا ذرا داؤ نہیں چلے گا, الفاظ ذرا کے, یہ نہیں کہ داؤ نہیں چلے گا میرے بندوں پہ, جو میرے خاص بندے ہوں ان پہ تیرا ذرا داؤ نہیں چلے گا. بس آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں ہیں جو میرے بندے, پھر اللہ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ کے میں شیطان کے بندے, بھائی ہم سارے بندے اللہ کے, یہ اللہ نے پھر کیوں فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا. تو پتا ہے دو بندے ہو گئے, ہے تو سب اللہ کے بندے, تو مسلمان بھی ہو گئے, مومن متقی بھی ہو گئے, گناہگار مسلمان بھی ہو گئے, اس میں کافر بھی ہو گئے, سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہاں اللہ نے تھوڑی سی تقسیم کر کے سمجھایا, اللہ نے دو ڈیوائڈ کر دیا, دو پورشن میں بائی فرکیشن کر دی, کہ جو ایک اللہ کی مان کے چلیں گے جو میرے بندے ہوں گے, جو میری مان کے چلیں گے, کچھ بندے ہوں گے جو تیری مان کے چلیں گے وہ تیرے بندے ہو گئے, تو اور تیرا جہنم ان کے ساتھ ہی کر دوں گا, ان کو تیرے ساتھی جہنم رشید کر دوں گا, تیرے بند ہوں گے, یعنی تیری مان کے چلنے والے مراد, جو تیری مان کے چلیں گے. صرف کافر نہیں ہوتا, وہ ہندوؤں کی طرح جو پوجا کر رہا ہے مندر میں بیٹھا ہوا, وہ خالی شرک نہیں کر رہا, وہ خالی گناہ نہیں کر رہا. اللہ پاک نے ایک عجیب بات فرمائی ہے قرآن پاک میں, اللہ فرماتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا, ذرا غور کیے شاید تھے, کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم سوچ رہے ہیں شاید وہی مشرک ہے جو ہندو کی پوجا کر رہے ہیں, بھائی یہاں تو نفسانی خواہشات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے طنز کر رہے ہیں, لوگ دیکھا ایسے شخص کو, دیکھا آپ نے کتنا بڑا پاگل ہے, اور مزید تشریح کیجیے, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے, यानी मैं क्या कह रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, इसको इससे कोई सरोकार नहीं है। ये तो वो करता है, इसका इमाम, इसका अल्लाह, इसका रसूल, इसका दिल है, इसका नफ्स है, जो समझ में आएगा करेगा, जो समझ में नहीं आएगा नहीं करेगा। नमाज का दिल चाहेगा तो पढ़ ली, नहीं दिल चाह तो नहीं पढ़ी। कुरान पढ़ने का दिल चाह तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। बस मर्जी का मूड का बंदा है, मूडी बंदा है ये नफ्स की इत्तबा करता है। तो भाई ऐसा नहीं करना है। एक होता है खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे चलना, और एक कहलाता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना। तो खुतवात शैतान से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना नाता बिल्कुल खत्म करें और खुतवात रसूल के ऊपर चलें, तो इंशाल्लाह कामयाब हम हो जाएंगे। तो अभी जो बात चली थी कि दीन पर इस्तेहामत तक्वा लिल्लाहियत कहां से आएगी, पहले तो सोबत अहलुल्लाह का एहतमाम, जहां फायदा हो मुनाफत हो, मुनाफत हो ना फायदा, ऐसे तो बहुत अल्लाह वाले माशाल्लाह, लेकिन मशायख फरमाते हैं फायदा उस सूरत में होगा कि जहां दिल से दिल मिले, जहां उठने का दिल ना चाहे, कैफियत बने, बात दिल पे असर करे, बस ये मुनाफत है। फिर वहां इस्लाही ताल्लुक कायम कर लो, दो चार महीने तक आना जाना रखो, इस्लाही ताल्लुक कायम कर लो, बहुत मजा आया, अच्छी तरह दिल को इत्मीनान हो जाए, फिर उसके बाद बेहतरी हो जाओ। फौरन बेहतरी हो जाता, पहले मुनाफत अपनी देखे, उसके बाद फिर इस्लाह। तो आज लोग इस चीज से महरूम है, नहीं तो अक्सर लोगों में चूंकि इखलास नहीं होता तो बड़ा नाम देखते हैं, बड़ी शोहरत देखते हैं, बड़ा मजमा देख के जाते हैं। भाई बड़े मजमे से कुछ नहीं होता, ये इखलास के मुनाफी है। बस मुनाफत हो जाए, छोटा मजमा हो बड़ा मजमा, अल्लाह मिल जाएगा इंशाल्लाह, तक्वा नसीब हो जाएगा। मुनाफत होना शर्त है। हजरत फरमाते थे मुनाफत नहीं हुई तो काम नहीं बनेगा। उसके शेर भी था हजरत का, नजर से नजर मिली मगर दिल से दिल ना मिला, नजर से नजर मिली मगर दिल से दिल ना मिला, उम्र भर नाव पर बैठे मगर साहिल ना मिला। अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होगा, तकवा नसीब नहीं होगा, मंजिल मकसूद नहीं मिलेगी। तो जो रहबर होता है फरिश्ते का अल्लाह तक पहुंचाने के लिए, पहले उससे दिल की से दिल का मिलना जरूरी है, सारी चीजें बाद में, तकवा वगैरह सब बाद में। फिर उसके बाद भाई शेख के सोबत के बाद दूसरी चीज हो जाती है अल्लाह का जिक्र। शेख का बताया हुआ जो वो जिक्रुल्लाह तजवीज करे उस पर आदमी नाका ना करे। जो लोग तकवे से रहना चाहते हैं, हर गुनाह से बचना चाहते हैं, इस्तेहामत चाहते हैं फजर को उठने की, मोबाइल फोन छोड़ने की, गंदी हरकतों से बचना चाहते हैं, जो दुनिया भी अच्छी होगी, पैसा भी आएगा, अल्लाह गम और मुसीबतें परेशानियां भी दूर करेगा तकवे की बरकत से, तो उनके लिए भाई आज कुछ बात लोग देर से हैं इसकी दोबारा दोहराना पड़ता है बहुत सी बातों को। तो ये अमाल करें तो सोबत, और उसके बाद जो है शेख का बताया हुआ जिक्रुल्लाह। अब इसमें जो कुरान पाक की आयत पड़ी गई थी शुरू में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह पाक ऐलान फरमा रहे हैं, अला अला कहते हैं रेड अलर्ट, हाई अलर्ट, होशियार बाश, बात बाद में अल्लाह बता रहे हैं अरबी ग्रामर के हिसाब से, कि अल्लाह फरमा रहे हैं जान लो, खूब समझ लो, अच्छी तरह समझ लो, क्या पहले अलर्ट किया जा रहा है, मुतवज्जो हो पहले क्या चीज फरमाना चाह रहे, फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं जान लो, मेरी याद से ही तुम्हारे दिलों को चैन मिलेगा। हजरत फरमाते थे अगर अल्लाह पाक ये कहते कुरान पाक में कहते मेरी याद से तुम्हें तुम्हारे दिलों को चैन मिलेगा, तर्जुमा गलत हो जाता है। इसका मतलब है भाई नंगी फिल्मों से भी चैन मिलेगा, हराम कारियों से भी चैन मिलेगा, गुनाहों से भी चैन मिलेगा, तो अल्लाह के जिक्र से भी चैन मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने जो ही कलर इस्तेमाल किया अल्लाह की याद से ही का मतलब है अल्लाह ने तमाम बातें खुदाओं की नफी कर दी, कहीं चैन सुकून नहीं है, अल्लाह की याद में ही चैन और सुकून मिलेगा। इसी में मजा है, इसी में सारे मसाइल का हल है, इसी में सारी तकलीफ का तमाम गमों का इलाज है, ही के अल्लाह ने ही को करके खत्म कर दिए सारी चीजों को। अब इसका भाई सवाल ये पैदा होता है भाई हम भी जिक्र करते हैं, बहुत से लोग हजरत वाला रहमतुल्लाह से हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हजरत अक्दस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अकबर साहब रहमतुल्लाह से फरमाते थे हजरत ये हम भी जिक्रुल्लाह करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन जो आप पाते फरमाते हैं वो अपने ऊपर हम नहीं पाते। तो हजरत ने फरमाया उसकी वजह ये है कि आपका जिक्र कामिल नहीं है, जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन कामिल जिक्र नहीं है। एक होता है नाकिस जिक्र, एक होता है कामिल जिक्र, नुक्स के साथ जिक्र, गुनाहों और उयूब के साथ जिक्र, और एक होता है कामिल जिक्र, मुकम्मल जिक्र। फिर हमने तशरीह फरमाई कि आपने को अगर सफेद को अच्छे आपने कपड़े पहने हुए नए साफ सुथरे, आपने इतने ओद लगा लिया जबरदस्त खुशबू उठ रही है, दूसरी तरफ आपने बिल्ली या कुत्ते का बहाना लेके दूसरी तरफ लगा लिया अपने कपड़े पे, तो क्या होगा फिर? कि भाई जब अच्छे कपड़े पहन लिए थे, इतने ऊँट महंगा वाला लगा लिया था, भाई ये गंद गलावत क्यों लगाई? अब वो इतने ऊँट की खुशबू बेकार हो गई, वो अब उसके साथ मिक्स होकर आएगी बदबू, बदबू और खुशबू का इम्तिजाज होगा, मिलकर आएगी तो लोगों के सर फटेंगे, सर का दर्द होगा, यार ये क्या तुमने लगाया, क्या तुमने पत्नी कौन सी खुशबू लगाई है, बदबू भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है, यानी दोनों चीजें चल रही है, गंद भी और खुशबू भी। तो फरमाया कि जो अगर सही मानो में इस आयत से मजे लेने और उसको अमली इसकी तफसीर बनना चाह रहे हो तो गुनाहों को छोड़ दो। जब कुरान पाक पढ़ लिया, अल्लाह का जिक्र कर लिया, शेख की सुहबत में आ गए, तो गुनाह की गंदगी को छोड़ो। जो अनवारात तुम्हें मिले, जो खुशबुएं तुम्हें मिली है, तो अब उसको अगर बचाना है उन खुशबुओं को और उन खुशबुओं में इजाफा चाहते हो तो गंद मत लगाओ। अब कुरान पढ़ लिए तो नंगी फिल्म नहीं देखना मोबाइल पे, अल्लाह का जिक्र कर लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए, कैफियत बन गई, कल में नूर पैदा हो गया, तो अब गालम गलौज नहीं करना, अब गीबत नहीं करना, बीवी की पढ़ाई नहीं करना, जुल्म ज्यादती नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, तो अनवरात जो बने वो खत्म। तो होता है क्या, दोनों चीजें साथ चल रही है हमारी, कुरान जिक्र अफ्तार भी चल रहा है, हराम काम भी दोनों चल रहे हैं, तो दोनों चीजें साथ चल रही है। होगा क्या मौत के वक्त, मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख गुना, तो 1 लाख जो है वो तकरीबन नहीं कमा, फरिश्ते बेचारे परेशान हो जाएंगे कहां लेके जाए, ऐसा ईमानदारी से चलाता है, ऐसा ईमानदारी से पक्के तरीके से दबा के नेक अमाल करता हूँ और दबा के आराम काम करता हूँ, इतना बड़ा ईमानदार था। तो भाई ऐसा नहीं करना, एक्स और वाई ग्राफ हम पढ़ते ना, एक एक्स और वाई ग्राफ होता तो भाई नेक अमाल को बढ़ाना है, गुनाहों को नीचे लेकर आना है। इस हालत में मौत आए कि बिल्कुल 0 एक्सिस के ऊपर हमारे गुनाह ये ना, और बिल्कुल हाई फाई हमारे नेक अमाल, इस हालत में मौत आनी चाहिए ना। ये क्या दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, फिर ऐसे मुसलमानों के लिए मुकाम आराम है। अक्सर बताता रहता हूँ कुरान पाक हम पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहते हैं उसको, देखें हम खोल के, मुकाम आराम उन लोगों के लिए है, अल्लाह पाक ने फरमाया उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान की फसल है, यानी ये वो लोग होंगे इनको वहां रखा जाएगा, जो ना जन्नत में भेजेंगे अल्लाह पाक उनको, ना उनको जहन्नम में भेजेंगे, दरमियान में रखेंगे। ये वो लोग थे जो जिनके नेक अमाल और गुनाह दोनों बराबर थे। तो भाई एक होती है जहन्नम से तो बचना ही बचना है, लेकिन दूसरी चीज इससे भी बचना है कि मुकाम आराफ से भी बचना है। अल्लाह ये भी ना मेरे हजरत फरमाते इस हालत में मरो, ऐसे अमाल की कोशिश करो कि यहाँ तुम्हारी मौत है और सीधे जन्नत, ऐसे क्यों नहीं मरते। बाद लोग मजाक में कह देते हैं यार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले ये पता है पिटते पिटाते जाएंगे जन्नत में, भाई ये मजाक की बात नहीं होती, ये कहना डरना चाहिए ऐसी बातों से। अभी उन्हें पता नहीं है कि वहां का एक दिन जो आखिरत का जो है वो दुनिया के 80,000 साल के बराबर है, मामूली बात नहीं है। तो मुकाम आराफ वाले लोग रोएंगे, बुरे लोग नहीं थे ये, नमाजी परहेजगार लोग थे, हज उमरे वाले लोग थे, दाढ़ी टोपी वाले थे, वरना जन्नत में चले जाते नहीं गए। तो अल्लाह ने जहन्नम से तो बचाया, बड़ा करम किया, नए कमाल थे माशाल्लाह मुबारक है, लेकिन बस बेचारे एक चूक कर गए थे, गुनाह से नहीं बचते थे। ये क्यों वाकया बता रहे हैं अल्लाह पाक, ये हमारे लिए अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। मैं अपने सारे गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, अनीफ अलावादी फरमाते थे रहमतुल्लाह, हमारे पीर भाई थे, शायद इंतकाल हो गया, मैं अपने सारे गुनाहों पर यूं शर्मिंदा हूँ, हवा में जो ना उड़ पाए मैं वो परिंदा हूँ। मैं अपने सारे गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, हवा में जो ना हो पाए मैं वो परिंदा हूँ। या इलाही ताकत परवाज अता कर मुझको, या इलाही ताकत परवाज अता कर मुझको, अभी हयात है बाकी अभी मैं जिंदा हूँ, अभी हयात है बाकी अभी मैं जिंदा हूँ। अल्लाह अभी मेरी मौत का वक्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तूने मुझे जिंदा रखा हुआ है, अल्लाह अभी मैं जिंदा हूँ उस पर करम फरमा दे। अल्लाह परवाज अता फरमा, तकवे की परवाज, रूहानी परवाज, नफ्स और शैतान को कुचलने की परवाज, अल्लाह के कुर्ब की परवाज। मर गया तो पानी खत्म, क्या बचा फिर, कोई दारुल अमल तो बंद हो गया, तो दारुल जगह, अब तो दारुल जगह तो किए का फल मिलेगा। अब अल्लाह नहीं कहेंगे फजर में उठो औरत आई है देखो तुम्हारे जनाजे पे, देखना मत इसको भाई, अब क्या नहीं देखोगे। अब जो ये छोड़ना है बदनगरी छोड़ी मरने के बाद, हजरत वाला हमारे मुर्शिद फरमाते थे अब तुम्हारे जनाजे पे कोई बंदाबरी का मरीज बेचारा मर जाए, उसकी मैयत रखी हो, खानदान की औरतें सब आके रो रही हो, तो हजरत ने इसलिए नहीं फरमाया है, कोई उसको बोले भाई तुम तो किसी जीते जी किसी औरत को नहीं छोड़ा करते थे, देखो ना तुम्हारे जनाजे पे कितनी औरतें आई हैं, हर साइज की, हर उम्र की हैं, हर तरह की हैं, देखो बहुत देखते थे ना, अब नहीं देख सकता बेचारा, अब आंखें बंद है, देखो भाई किसी को नहीं छोड़ते थे। बीवी भी रो रो के कहती है, अभी बेचारे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कबाब खिला दो बहुत दिल चाह रहा, बस मैं तलने गई थी और अचानक दिल पकड़ के बैठ गए और अटैक आ गया, खत्म हो गए, रो रो के बता रही। हजरत ने फरमाया अब क्या हुआ कि जबान कबाब और खाने पीने के जायके के इदराक से महरूम, नजर बद निगाही के गुना से महरूम, सही ना, कुरते शाम में भी खत्म। बाद लोग खवतीन का हाथ भी पकड़ते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, बेशरम लोग, मर्दों से नहीं औरतों से, बड़ा ही आजकल खानदान में रिवाज हो गया, आम बात हो गई। आप सलम फरमा रहे हैं किसी औरत के हाथ से टच, जिस्म टच होना या हाथ से हाथ मिलाना, ऐसा जैसे सुअर को टच करना, जंजीर को टच करना, लम्स करना। तो भाई अब जो सारी चीजें छोड़ी, अब तो क्या छोड़ी, अगर ने फरमाया ये मजबूरी का छोड़ना, बाजार नहीं मिलेगा, मगर तब तक जीती जी जब आके थी, जवानी थी, शहवत थी, दुनिया की ख्वाहिशात थी, उस वक्त ये सारी चीजें अल्लाह पर फिदा कर देते तो मौला को पा जाते थे, मौला को पा जाते। अब नहीं, अब नहीं, लाख बद नगरी से बच जाओ, लाख अब सारी चीजों को छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं, अब तो भाई बस अल्लाह रहम करे, रहमत की दुआ बस। तो जीते जी सारी चीजों को छोड़ना है, जो जीते जी सारी चीजों को छोड़ता है, गुनाहों से बचता है, तपन से रहता है, गोया जीते जी खुदा तक पहुंच जाता हो। इससे मुझे मेरा एक शेर याद आया इसी मौजू के ऊपर, के बाद वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, मरने के बाद तो भाई सिर्फ अल्लाह के सामने होंगे, उसमें क्या कमाल है, काफिर भी खड़े होंगे अल्लाह के सामने, बाद वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, जीते जी तू कैसे मिले ये आरजू मरने नहीं देती, जीते जी तू कैसे मिले ये आरजू मरने नहीं देती। तो आशिकीन जो होते हैं उनका यही हॉन होता है, अल्लाह मरने के बाद तुझ तक आए तो क्या है, वो तो जाना तो मजबूरी का जाना है, मजा तो है कि जीते जी आदमी खुदा तक पहुंचे, जीते जी खुदा को पा जाए, खुदा तक पहुंच जाए, रूह की अल्लाह तक पहुंच जाए, बातनी तौर पर अल्लाह तक पहुंच जाए। वो मैयत तो खाली दिखावा होती है, दुनिया दिखावे का, जनाजा जब उठता है तो जनाजा जा रहा है, जिसम कब्र तक जा रहा है, रूह तो उसकी पहले अर्श आजम का तवाफ कर रही थी बरसों से अल्लाह के ऊंचा जाना में, ऊंचा यार में। आशिकीन की बातें कुछ और होती है। तो शेख का बताया हुआ जो जिक्र है ये जरूरी होता है, चैन कब मिलेगा भाई कि जब जब हम कुरान पढ़ लें, अल्लाह का जिक्र कर लें, तो उसके बाद नूर बनेगा, स्टीम बनेगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, आप असलम की मोहब्बत आएगी। अब उसको बचाना है, उस नूर को, उस कैफियत को, अब गुनाह नहीं करना है, गुनाह से बचना है। इंसान चलो हो गया गुनाह, बदनजरी कर लिया, कोई और गुनाह कर दिया, फिर तौबा करनी है उसी वक्त, जैसी फुर्सत मिले उसी वक्त आदमी कह दे अल्लाह पाक मुझे माफ फरमा दे ये मैंने क्या किया, तो इंशाल्लाह ताला मुझे अनवरात का जो जखीरा उसके कल्ब में बना है वो जाया नहीं हुआ। और ऐसा आदमी भी मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह वाला कहलाएगा, जो फौरन बशरी तकाज़ों की जो गुनाह हो जाए फिर तौबा कर ले, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, तो अल्लाह की महबूबियत से उसका इखराज नहीं होगा, उसकी अल्लाह की महबूबियत से नारा खुरूज नहीं होगा, अल्लाह की महबूबियत से अगर वो तौबा में लगा रहेगा। और ये जिक्रुल्लाह भाई कैसे करना है, तो जिक्रुल्लाह नेका माल कर पहले सोबत, फिर शेख का बताया हुआ जिक्रुल्लाह, और जिक्रुल्लाह के अनवारात जिक्र देखें, याद रखिएगा जितना जानदार जितना शानदार अल्लाह का जिक्र होगा उतना शानदार अल्लाह की तरफ से तकवा नसीब होगा, अगर ढीला डाला जिक्र होगा तो ढीला डाला तकवा आएगा। अब जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा आपने कलमा पूरा पढ़ लिया, आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार कर ली। अब कैसे, अब बहुत से लोग ढीले डाले अंदाज में बड़े थके हुए अंदाज में पढ़ते बड़ी मुश्किल से, तो मुसीबत आ गई, बोझ आ गया, बस एक बला को टालना है, बड़ी मुश्किल से 100 दफा या 50 दफा करके करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट में ही रखते। अब एक जिक्रुल्लाह तो ये ढीले डाले अंदाज से, अदब के साथ क्या है, दरवाजा बंद करें, मोबाइल साइलेंट पे करें, घर वालों को बोल दें मैं घर खुद कमरे से बाहर आऊंगा, कोई नॉक ना करे, अल्लाह ना करे कोई शरी हूर अलग मामला है, आम हालात में बावजू इतर लगाए और किबले की तरफ रुक करके बैठे, टेक लगा के जिक्रुल्लाह ना करें, सही है, तसव्वुर के साथ आंखें बंद करके शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ के फिर अल्लाह से कहें, अल्लाह इस तसव्वुर के साथ अल्लाह का जिक्र करें कि अल्लाह की बात मुझे देख रही है, अल्लाह मेरे सामने, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मेरा जिक्रुल्लाह सुन रहा है। फिर उसके बाद इस तरह करना है मोहब्बत से दर्द दिल के साथ कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, और इस तरह पुकारे जो बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तो 2-4 दफा करके बता दो उस अंदाज से करें, इस तरह से जिक्रुल्लाह करें, तो इंशाल्लाह ताला कैफियत बनेगी। और अभी पर्चा भी जिक्रुल्लाह का मिलेगा, उसमें कुछ तफ़ुहुरात है, कुछ मुराकबा जात है, तो उसमें बताया कि जिक्रुल्लाह करते हुए कुछ मुराकबे भी करने, ये तो जबान का जिक्र चल रहा है हमारा, कल भी जिक्र भी है, तफ़ुहुर करना है जिक्र के दौरान, तो उससे क्या होगा, तस्किया नफ्स होगा, अल्लाह रसूल का इश्क का गलबा होगा। फिर क्या होगा, जब जिक्रुल्लाह अच्छा ढंग से तमीज से अदब के साथ होगा, फिर आदमी बाहर निकले खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, और फिर कभी किसी नामहरम पे नजर अगर इसकी पड़ेगी, अव्वल तो उठेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो ऐसे खुद ब खुद नीचे होगी, कहेगा ये क्या हुआ, मैंने तो नजर की नहीं, नीचे खुद ब खुद कैसे होगी, ऐसा लगेगा जैसे आंखों के अंदर स्प्रिंग आ गया, जो ऑटो शटडाउन एक लव होता है, ऑटो शटडाउन होगी आपको, खुद बंद होंगे, खुद नीचे होगी। क्या कह रहे मैंने तो आप नजर नीचे की नहीं, पहले तो मैं देखता था आपको, पड़ गई तो पड़ गई, आप जो है वो नीचे हुई नहीं। लेकिन जब जिक्रुल्लाह सही तरह से होता है तो जिक्रुल्लाह उसे काम दिखाता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है वो फिर हमारे खून में, हमारे जो खून के अंदर शामिल होगा, हमारी जबान से अल्फाज निकल रहे हैं वो खून में शामिल होंगे, पट्टों में, हमारे दिल में, हमारे जिगर में, हमारे जिस्म के आगा में, हमारे दिमाग में, हमारे कानों में, हमारे कानों तक, हमारी आंखों तक वो खून की सप्लाई पहुंचेगी। तो सरापा जिक्र बन जाएंगे, सरापा नूर बन जाएंगे, अल्लाह का नूर खून के अंदर शामिल होगा और तमाम आगा तक जाएगा। तो ये जिक्रुल्लाह का जो खून होगा उसमें नवरात शामिल होगी, जब वो आंखों तक जाएगा तो फिर आग गंदी नजर डालते हुए हमें शर्म आएगी, खुद ब खुद हमारी आंख नीचे होगी, क्योंकि नूरानियत के साथ जुल्मत नहीं रह सकती। जैसे अंधेरा खूब हो, आप एकदम से आप बल्ब ऑन करें तो पूरे कमरे में रोशनी फैल जाएगी, क्योंकि रोशनी आई, जुल्मत खत्म, अंधेरा खत्म। अगर जिक्र अल्लाह का सही तरह से किया होगा तो गंदगी खिबाफत सब खत्म हो जाती है, लेकिन शर्त ये जिक्रुल्लाह ढंग से किया जाए, ढंग से किया जाए तो फिर ये जबरदस्त माबून मददगार होगा। फिर लेके बैठे मोबाइल, मैं देखता हूँ कैसे शैतान बहकाता है। जितना शानदार जिक्रुल्लाह होगा उतना शानदार तक्वा नसीब होगा। आज देर हो रही थी, कोई कहता है टाइम नहीं मिलता, मैं तो बाइक पे जिक्रुल्लाह करता हूँ। वाह भाई, बाइक पे खाना भी खा लिया करो, सारे काम बाइक पे कर लिया करो। यानी जिक्रुल्लाह को इतना थर्ड क्लास समझा रहा है, वो कह रहा है टाइम नहीं होता, तो खाना खाते हैं जिक्रुल्लाह कर लेते, चलते फिरते मुसीबत आ गई है उसको निमटाना है। ये अदब है, ये जिक्रुल्लाह ठीक है, कर सकते हैं, जायज है, मना नहीं है, लेकिन वो फिर उसका आपको रिजल्ट सामने नहीं आएगा। अल्लाह को थर्ड क्लास के दर्जे में हम रखें, नाउज़बिल्लाह, अल्लाह का नाम तीसरे दर्जे में रखें, थर्ड क्लास में रखें, चलते फिरते उठते बैठते। बीवी से भी अगर हम इस तरह बात करेंगे ना, चलते फिरते उठते बैठते, तो वो भी गुस्से में एक हाथ लगा देगी, क्या हो गया आपको, तमीज से बैठ के बात क्यों नहीं करते आप? जब बात करते हैं कहते हैं हाँ चलते फिरते, कभी वहां जाके बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, चल फिर रहा है, बैठ के बात करो भाई, दुनिया से तमीज से बात कर दो, बीवी हूँ आपकी यार, वरा बैठो तो सही, मेरा पता क्यों नहीं करते आप, मेरे टाइम नहीं है। बीवी बुरा मान जाएगी, लेकिन भाई वो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, उसके साथ भी तो ये कर रहे हैं, कहाँ टाइम है, टाइम ही नहीं। नोट आ जाए बस, नोट नोट और वोट मिल जाए, और चाहिए अल्लाह के सब कुछ, लेकिन अल्लाह की, अल्लाह को सही तरह से याद नहीं करना है। अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है, 10-10, 20-20 घंटे रोकाना दुनिया के लिए। होटल पे लोग बैठे ही मिलेंगे, आराम से चले जाए चाय के होटल पे, 6-6 घंटे लोग बैठे रहते हैं, मोबाइल लोग लेके बैठते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं लोग, लेकिन 10 मिनट अल्लाह के लिए नहीं होते, ढंग से तमीज से अल्लाह का नाम ले रहे। एक बुजुर्ग हजरत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हमारे काबिर औलियाल्लाह में से सदियों पुराने बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं अल्लाह के जिक्र के ऊपर रंगते खूब चढ़ी एक रंग तुम्हारा लेकर, बहुत पसंद है मुझे इसे, फरमाते हैं रंगते खूब चढ़ी एक रंग तुम्हारा लेकर, हम क्या से क्या हो गए तुम्हारा नाम लेकर, हम क्या से क्या हो गए तुम्हारा नाम लेकर। हजरत फरमाते थे मिजाज बदल जाता है अल्लाह के जिक्र से। सर्दी में लोग कहते हैं अरे गर्मा गर्म चाय पिला दो, ठंड लग रही है कॉफी पिला दो, गर्मी आ जाए गर्म। अब जब चाय कॉफी पी कहते हैं यार माशाल्लाह मजा आ गया यार, सर्दी लग रही थी गर्म हो गया जिसम, गर्मी आ गई। पर मैं कहता ना ऐसी प्याली चाय की तुम्हारे जिसम के टेम्परेचर को, दिल दिमाग की कैफियत को चेंज कर दे, सर्दी को गर्मी में बदल दे, तो अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह के नाम में क्या इतना भी असर नहीं होगा, चाय की प्याली से भी ना उबला, अल्लाह का जिक्र कमता रहे तो उससे तब्दील नहीं होगा तुम, तुम्हारी सोच ना बदले, तुम्हारा दिल ना बदले, तुम्हारा दिमाग ना बदले, कुछ भी नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। नामुमकिन है, अल्लाह का नाम लो ढंग के साथ, अल्लाह का जिक्र करो, फिर देखो क्या होता है, सब कुछ बदल जाएगा, चलना फिरना उठना बैठना बातचीत, जिन बातों पर हंसते हो बाद में रोगे, इस शर्म से इन बातों पर मैं हंसता था, इन लानती बातों पर, और इस बात पर रोगे इन बातों पर मैं हंसता था, सब कुछ बदल जाता है, चलना फिरना उठना बैठना। दुनिया भी कहती यार ये वही बनता यार, ये तो चरसी था ये तो चरस पी रहा था यार, ये तो बिल्कुल ही बदल गया, कहाँ गया था, किसकी सबक मिल गई इसको, जमीन में रहता था, गुस्से में रहता था हर वक्त, अब क्या मुलायमत, बिल्कुल नरमी, मोहब्बत, अखलाक, कमी, इसको हैरान हो जाएंगे यार, इसकी तो सारी नशीब बर्खास्त ही बदल गई, लगता ही नहीं वही बंदा है। तो जिक्र अल्लाह का ऐसा बदलता है, अल्लाह का नाम है भाई, अल्लाह का नाम मामूली बात है, हम समझते नहीं अल्लाह के नाम को, लेकिन भाई फायदे तो बहुत है अल्लाह के जिक्र के। लेकिन हजरत मौलाना शबरी खानी रहे मतलब से किसी ने पूछा था मुरीद ने, हजरत क्या जरूरी हम अल्लाह का नाम लें तो किसी की इजाजत से लें, अल्लाह का नाम है, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया मेरा जिक्र कसरत से करो, हम शुरू हो जाएं। हजरत ने फरमाया कि काटती तो तलवार ही है, काटती तो तलवार ही है, लेकिन शर्त ये किसी सिपाही के हाथ में हो, क्या मतलब, काम तो जिक्रुल्लाह से ही बनेगा लेकिन किसी की इजाजत से हो। वजह क्या है कि बगैर इजाजत के कफरत से जिक्र करने से दिमाग उल्टा हो जाता है, पागल तक हो जाता है। ये मेरी राय नहीं है, इस पर उलमा और मशायख के 1400 साल से इजमा है इस बात के ऊपर। जैसे बल्ब है इसमें 220 वाट आते हैं, जैसे अब इसमें बल्ब में हम 5000 वाट डाल दें क्या होगा, फट जाएगा क्योंकि लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो एक कैपेसिटी होगी, तहम्मुल होता है। तो अल्लाह ने हमें फरिश्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने हमारी एक तहम्मुल रखा, हमारे दिल दिमाग एक एक हद तक बोझ उठा सकते हैं अल्लाह के जिक्र का, उसकी एक तादाद मुतय्यन करते हैं। मशायख वो अपनी इजाजत से देखते हैं कि बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, औरत है, डिप्रेशन का मरीज तो नहीं है, गुस्से का मरीज तो नहीं है। ये नजर हर एक को अल्लाह ने नहीं दी, फिर उस हिसाब से फिर वो देखते हैं कौन सा जिक्रुल्लाह देना है। और जमाली जिक्र है, रहमानी जिक्र है, बहुत से अल्लाह के जो जिक्र होते हैं वो जलाली होते हैं। और गुस्से का मरीज अगर कोई जलाली इसे में पढ़ना शुरू कर दे तो उसके गुस्से में 10 गुना इजाफा और हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो। तो ये नजर अल्लाह ने किसी को दी, आज चलते फिरते लोग कहते हैं परेशान हो, ये पढ़ लो बस मसला है, बस कुछ चैंपियन बने हो मरवा दिए उसको। कितने टेढ़े केस हो आते हैं बेचारे नफ्सियाती, मेरे पास खुद आते हैं बिल्कुल बेचारे आधे पागल, पता नहीं किसने बता दिया कि 3000 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ो। भाई 3000 दफा क्या कर दिया, ये पागल हो गए बेचारे लोग, बिल्कुल स्टिल हो गए थे, जैसे कोमा का मरीज होता है, ना उठ रहा है, ना बैठ रहा है, ना चल रहा है, ना हिल रहा है, तो खामोश सबको जो हवन को इधर उधर देख रहा है, रोना पीटना गले मच गया, ये क्या हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गए, फिर ऐसे लोग तो ये फिर एक अलग रहस्य। तो बगैर इजाजत के फिक्र नहीं करना, किसी सच्चे शेख कामिल की सोबत में आदमी रहे, जाए आना जाना शुरू करे, फिर उनका बताया हुआ फिक्रुल्ला करे, फिर देखे क्या उसको इनामत हासिल होंगे। और अल्लाह ने पुराने बाप में फरमाया कि मेरा जिक्र खामोशी से भी करो, खुफिया तरीके से, बगैर आवाज के थोड़ी सी आवाज से भी करो। दो तरीके से खुद अल्लाह फरमा रहे हैं कि आवाज से भी करो, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि मोहल्ले वाले उड़ जाए, सोते हुए लोग घर में उड़ जाए, और कम से कम इतना किसी की तकलीफ ना हो। मतलब अगर हम कोई सो रहा हो फिर तो जायज ही नहीं है, इसकी नींद खराब हो उस सूरत में जायज नहीं है जिक्रुल्लाह करना, दूर जाके कर लें। लेकिन अगर घर छोटा है और आपको पता है कि अगर मैं जिक्रुल्लाह करूंगा नींद खराब होगी लोगों की, तो खामोशी से कर लें, पहले ये तरीका होता है। तो और कम से कम इतनी आवाज दो कि अपने कान आदमी के सुन लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसकी ला इलाहा में और अल्लाह के दरमियान किसी किस्म का कोई हिजाब नहीं रहता, और अल्लाह से मुलाकात करती है उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हदीस शरीफ है, सूफियों की बातें नहीं है, खानकाही बातें नहीं है, ये खाली हमारे प्यारे आका दूजा नबी पाक इरशाद फरमा रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है हमारे वजूद से, हम तो अल्लाह तक सातों आसमानों के ऊपर रशे मोहल्ला तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे वजूद से निकला हुआ, हमारी जबान से निकले हुए जो अल्फाज है ला इलाहा इल्लल्लाह के, वो वहां तक पहुंचते हैं अल्लाह तक, उससे मुलाकात करते हैं उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से मुलाकात करती है, मुसाफा करती है उसकी ला इलाहा। मान कोई हिजाब ही नहीं रहता अल्लाह उस बंदे के दरमियान, तो नूर कितना आएगा हमारे अंदर। मेरा चंद दिन करके तो देखेंगे, शर्त यही है, शर्त यही है। तो फिर जहर नहीं खाना है, मिसाल के तौर पे किसी आपको बेहतरीन कोई हकीम मिल जाए, असली हकीम मिल जाए, हकीम जानीनूस मिल जाए मिसाल के तौर पे, लेकिन आपको बेहतरीन कुश्ते माजून आपको खिलाए, लेकिन साथ में कहेगा कि जहर नहीं खाना, नहीं तो सारी मेरी दवाइयों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना, तो कितने हकीम हो उसकी फिर दवाइयां असर नहीं करेंगी अगर जहर उसके साथ खाए तो। बस यही मामला है, जब जिक्रुल्लाह वगैरह कुरान पाक हो जाए, सोबत में आदमी आ जाए, तो फिर गुनाह का जहर ना खाए आदमी, तो होगा क्या, प्रेशर बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। नेक अमाल कर रहा है, कुरान जिक्र, अफकार जिक्र, ये वो बेहतरीन तरीके से चला, गुनाह कर नहीं रहा, तो होगा क्या, फिर रूहानी स्टीम उसके अंदर पैदा होना शुरू होती है, अल्लाह का कुर्ब उसके अंदर पैदा होना शुरू होगा, फिर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जहां अल्लाह की बात सुनेगा आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे, कहेगा कि मेरे कल्ब को हो क्या रहा है। और जमीन पर रहते हुए उसको ऐसा लगेगा जैसे उसकी रूह अर्श आजम का तवाफ कर रही है, उसको लफ्जों से आदमी नहीं बता सकता, क्योंकि अनवारात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गुनाह कर नहीं रहा, गुना करने से हो जाए प्रेशर बढ़ेगा, अल्लाह के कुर्ब का फिर रूहानी बाग जो है वो खुलना शुरू होते हैं, फिर आप उसम की इजाजत हो जाती है, बाग दफा वहां से मदीने पाक से उसको प्याम मोहब्बत आने लगते हैं, अल्लाह की तरफ से कशफिलाम उसको होने लगते हैं, फिर उसके गैबी मुकाशफात बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गुना नहीं कर रहा, अनवारात का हुजूम उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, तकवे का नूर चेहरे पर आएगा, चलते फिरते आएगा, फिर खुद हैरान होगा, लोग अजीब अंदाज में उससे इज्जत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, कहेगा आज तक तो कभी ऐसी मोहब्बत करी नहीं, ये दुनिया मेरे आगे इतनी पीछे क्यों पीछी जा रही है, तुझे अल्लाह का नाम तेरा सब बनेगा काम। अरे गालिम, अब तू अल्लाह की नाफरमानी से बच रहा है, जो अल्लाह का हो गया, हमारे प्यारे आप दो जहां इरशाद फरमा रहे हैं, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया,
یہ صوفیوں کا بیان نہیں ہے, خانقاہی بیان نہیں ہے, قرآن و حدیث سے مبین ہے. آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا, اور جب اللہ کسی کا ہو گیا بھائی تو بچا کیا, کیا بچا؟ ہمارے اعمال میں نقص ہوتا ہے, نقائص سے بھرے ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے ہم اللہ پاک ہمارے معاملہ ویسا نہیں کرتے جیسا ہونا چاہیے. الحمدللہ اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ ہمیں اچھا کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, عشق کرا رہے ہیں. تو جب نقائص کے ساتھ یہ معاملہ آتے ہیں, اگر ہم کامل بن گئے تو پھر اللہ کیا نہیں دیں گے, پھر کیا نہیں دیں گے. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ. تو یہ جو اللہ کا جو ذکر ہے بھائی, یہ بہت عظیم چیز ہے. جتنا شاندار ڈھنگ سے تمیز سے ادب و آداب کے ساتھ ذکر اللہ ہوگا تو اس کی کیفیات وغیرہ پھر کچھ اور ہی ہوں گی. پھر اس کے بعد آدمی کو اتنی روحانی پاور, طاقت اور تقویٰ نصیب ہوگا, پھر فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا. پھر یہ اللہ کا ذکر فجر میں اٹھائے گا, کہے گا یار مجھے فجر میں تو میں تو گھوڑے بیچ کے سوتا تھا, یہ کون اٹھا رہا ہے مجھے. بالکل فریش اٹھے گا, بھلے رات کو 3 بجے سویا ہوگا, اگر 5:30 بجے ایسی بہترین آنکھ کھلے گی, 2-2.5 گھنٹے میں کہے گا لگ رہا ہے میں 10-12 گھنٹے سو لیے, فریش اٹھے گا. کیونکہ وہ اللہ کے ذکر کا نور اس کے قلب کے اندر آ گیا ہے, وہ اس کو اٹھائے گا, فریش اٹھائے گا, اس کو کرنا نہیں پڑے گا, آٹومیٹک طریقے سے سسٹم اندر کا آن ہو جائے گا سارا اللہ کے ذکر کی برکت سے. تو اللہ کا ذکر کو ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں کہ اللہ کا ذکر کا فنکشن کیا ہے. ہمارے سب خون کے رگوں میں دوڑے گا یہ, اور جہاں آدمی ذکر سے غافل ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان اس دل کو قبضہ کر لیتا, پکڑ لیتا ہے. بغیر اللہ کے ذکر کے جو دل ہوتا ہے وہ خالی گھر کی طرح ہوتا ہے. خالی گھر میں جو شیطان آسے آ جاتے ہیں, تو اسلام فرما رہے ہیں بغیر ذکر کے جو گھر ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے, شیطان اس میں آ کے بسیرا کر لیتا ہے. شیطانی افراد جیسے لوگ ہو جاتے ہیں, وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ ذکر اللہ سے محروم ہوتے ہیں, ذکر اللہ چھوڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شیطانی تسلط خود بخود ہوگا. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ زخرف میں, سورہ جن میں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے, ذکر سے, قرآن ذکر اذکار سے بچتا نہیں کرتا, ہمیں یاد نہیں کرتا, تو ہم اس کے اوپر ایک ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا. اللہ کہہ رہے ہیں میں شیطان تمہیں مسلط کروں گا, وہ تمہارا ساتھی بن کے تمہارے ساتھ رہے گا. اور دوسری جگہ فرمائے تم پر اپنا عذاب نازل کر دوں گا. الگ سے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آدمی اللہ رسول کا نام لینا چھوڑ دے, اپنے معمولات کو چھوڑ دے. یہ معمولات قرآن ذکر اذکار وہی بات, یہ کسی اسپیسیفک کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر ایک کونا ایسا ہونا چاہیے مثل مسجد کی طرح سے ہو. گھر کے اندر ایک تمہارا ایسے کونا ہونا چاہیے جو مثل مسجد کی طرح سے ہو, جہاں بیٹھ کے تم اپنے قرآن ذکر اذکار اپنے معمولات کو پورے کرو, یعنی اس کو پاک صاف رکھو, جگہ کو جگہ پر ہمارا متعین کرو. آج لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. آج بڑے بڑے پیسے والے لوگ دیکھے, بڑے بڑے گھر بنواتے ہیں ہزار ہزار گز کے, ایک کمرے بھی ایسا نہیں رکھتے کہ یہ میری جائے نماز کی جگہ ہے یا میرے معمولات کی جگہ ہے. بہترین واش روم تک بنا رہے ہیں, حضرت موتری جگہوں پر بھی نا واش روم, باتھ روم کو, ٹوائلٹ کو بھی ایسا بنا دیا جیسے کیا بتائیں کہ آدمی سو جائے آگے, اندر بیڈ تک رکھا دیے لوگوں نے اندر, عجیب. لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کرے. کیا ہے, نماز ہی تو پڑھنے کی, کہیں بھی جگہ بچھائیں گے نماز اور پڑھ لیں گے. محبت کی بات ہوتی ہے, ادب کی بات ہوتی ہے, عشق کی بات ہوتی ہے. اللہ, تو بھائی پہلے ہو گیا صحبت اہل اللہ کا اہتمام, پھر شیخ کا بتایا ہوا ذکر, تقویٰ بعد میں آئے گا. ایسے نہیں آتا تقویٰ, نہ صحبت شیخ ہے نہ ذکر اللہ کا تقویٰ آ گیا, ایسے نہیں ہوتا بھائی. ہر چیز کی اللہ نے ترتیب رکھی ہے, اسٹیجز رکھے ہیں, ترتیب رکھی ہے, اسٹیجز ہے, نمبر نمبر وار. پھر اس کے بعد آدمی گناہ سے بچنے کا ارادہ ہوتا ہے, پھر اللہ سے بھیک مانگی پھر بھیک مانگنی پڑتی ہے. اور یہ سب ذرائع ہیں, صحبت شیخ, قرآن ذکر اذکار یقینی بات نہیں, یہ ذرائع ہیں. اللہ نے اور رسول نے حکم دیا ان ذراؤں کو اختیار کرو, پھر اللہ سے اللہ ان سب کو وسیلہ بناتے ہیں, اللہ ان کے ذریعے سے ہماری مدد فرما, نفس اور شیطان کی شر سے بچا اور ہمیں کامل تقویٰ نصیب فرما. پھر اس کے بعد کام آتا ہے اللہ کا فضل. پہلے یہ ساری چیزیں ہدایت کے ذرائع ہیں, ہدایت نہیں ملے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا, اللہ سے بھیک بھی مانگنی پڑتی ہے, پھر اللہ پاک کرم فرماتے, پھر اس کے بعد کام بنتا ہے بندے کا. اللہ, تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی ذکر, ہمارے ہی کا جو لفظ ہے, ہمارے دلوں کو چین کب ملے گا بھائی, کہ جب دو ذکر, ذکر کے دو رخ ہوتے ہیں, ذکر کے دو رخ ہوتے ہیں, کہ جب ذکر اللہ ہم کریں تو گناہوں سے بچیں, یہ ہے. پھر اس کے بعد مزہ آئے گا, پھر ہی کا لفظ استعمال ہوگا, پھر چین ملے گا. حضرت نے یوں ایک اور مثال دی, مچھلی ہو دریا میں, اب مچھلی کو پورا پانی میں डिप ना करें, उसको ना डुबोएं, उसको आधा आप डिबो के रखें पानी में, उसको आधा धड़ जो है जिस पानी का हो, जिसम आधा धड़ उसका पानी के अंदर हो, आधा सर बाहर हो, सूरज की छुआएं लग रही हो, तो कभी मछली चैन पाएगी नहीं पाएगी, क्योंकि भाई मछली कहेगी भाई मुझे चैन नहीं मिल रहा, ये आप क्या कर रहे हो, बेचैनी बढ़ रही है मेरी, या तो पूरा निकाल के बाहर फेंक दो या पूरा पानी में गर्क करो, पूरा पानी में जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, जब तक कि मेरे दाएं पानी बाएं पानी ऊपर पानी नीचे पानी पूरा जब तक चारों तरफ पानी नहीं होगा मुझे सुकून चैन नहीं मिलेगा। तो ये मछली का हाल हो गया ना, तो हमें भी चैन नहीं मिलेगा कि हम आधे रहमान के बन के चल रहे हैं आधे शैतान के बन के चल रहे हैं, तो फिर एक टिकट में दो मजे नहीं आएंगे, फिर वो जिक्र के साथ मजा नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा, दिल में आग लगी हुई होगी। उस मछली की तरह बनना है कि चारों तरफ पानी में मुस्तगरिक हो, चारों तरफ अल्लाह के अनवारात के अंदर हम डूबे रहो, नाफरमानी हम छोड़ चुके हों। ये कोई मुश्किल काम चीज नहीं बता रहा, इस दौर में भी 2025 की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े नौजवान 20-20 साल के लड़के ऐसे मुत्तकी परहेज़गार हैं जिसको क्या बताएं, कुतुब के मुकाम तक पहुंचे हैं। यंग 20-25 साल क्या उम्र होती है, क्या वो 2025 के नहीं है, क्या वो क्या सदियों पुराने, क्या उनको ये माहौल नहीं मिल रहा, क्या वो आसमान शोक रहे हैं, क्या वो फरिश्ते हैं, क्या वो बशरी तकाबुल से क्या वो मावरा है। वो बात ये होती है हमारा इरादा नहीं होता, इरादा नहीं होता, वो भी तो कर रहे हैं ना, बहुत अल्लाह वाले मिलेंगे इस दौर में, वो कैसे बच रहे हैं, वो कैसे तकवे से रहे हैं। अलहुमा हा खजूरा हा व तकवा हा, अल्लाह ने फरमा दिया मैंने तुम्हारे अंदर गंदगी का खजूर का मादा भी रखा है और तकवे का भी मादा रखा है, दोनों चीजें अल्लाह ने बिल्डिंग करके भेजे, मुझे एतराज पैदा हो जाता अल्लाह पाक आपने इतना गंदे माहौल में पैदा करके भेज दिया, चारों तरफ बेआईए कैसे बचे, कहां तक बचेंगे, नफ्स और शैतान आपने पीछे लगा दिए, हसीनों का जाल आपने बिछाया हुआ हमारी आजमाइश के वास्ते, कैसे बचे। तो इसलिए अल्लाह ने तसल्ली दे दी, अलहमा हा खजूरा हा, हमने तुम्हारे अंदर खजूर का गुनाहों का गंदगी का मादा रख दिया, वो तकवा और तकवे का भी, दोनों चीजें रख के भेजिए, आपको एतराज नहीं कर सकता, अल्लाह ने खाली नहीं कहा मैंने तुम्हारे अंदर खजूर रख के भेजा है, अल्लाह पे इल्जाम लग जाता, अल्लाह ने मुसीबत में डाल दिया, अल्लाह ने कहा दोनों चीजें दे के भेज रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी जिस साइड को इस्तेमाल करो, जिस साइड को इस्तेमाल करो। होता यह है मुश्किल क्यों लग रहा है इस जमाने में तकवा, अल्लाह फरमाते थे कि जब किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाता तो खराब हो जाती है। तो जीरो मीटर अगर आप कोई ग्राइंडर लेकर आते हैं, कोई मशीन लेकर आता है, उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें क्या होगा, 2-4 साल में अब जंग आ जाएगा, बेकार हो जाएगी, नहीं थी, लेकिन चूंकि आपने इस्तेमाल नहीं की बेकार हो गई वो। तो अगर फरमाते हैं तखवे को फजूर को, अल्लाह ने फजूर हमारे अंदर रखकर भेजा, फजूर को हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस साइड को खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, दबा के गुनाह करते रहते, तो वो साइड शानदार हो गई हमारी, फौरन खट से फजूर होता है, क्योंकि इस्तेमाल कर करके हमने उसको रवा कर दिया। अब चूंकि तखवे का इस्तेमाल है नहीं, तो अब तकवे से रहने की कोशिश करेंगे, तकलीफ होगी, क्या मशीन में जंग आ गया ना भाई, अब मशीन में तो जंग आ गया, इस्तेमाल किए नहीं मशीन को तो खराब हो रही हो, अब तकवे को इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे मौत वाकई हो जाएगी, दिल बाहर निकल आए हो। एक साहब ने कहा औरतों को देखना छोड़ दे तो जीने का मजा क्या रहा, क्योंकि भाई बेचारों को ऐसी बातें पता ही नहीं, कोशिश करी तो कहने लगे ऐसा लग रहा था कि बस मार लो अपने आप को, जिंदगी तंग लगने लगी, यानी इतने आदि हो गए के गुना के, अब तकवे पर आना उनको लग रहा है कि बस जिंदगी जीवन भाइयात होगी। अरे तो पहले क्या कर रहे थे, देखी तो रहे थे, खाली देखने से क्या होता है, फरमाते थे बेवकूफी का गुना है, लेना है ना लेना तो अपने घर को, अपने घर में देख के हवा ठंडी हवा भरी और चले गए भाई, तो उससे क्या हुआ, सोएगी तो अपने शौहर के साथ ही, तुम्हारे पास थोड़ी आ जाएगी, तो काहे को दिल को पागल कर रहे, क्यों दीवाने बन रहे हो, अब उससे क्या सुकून पाया तुमने, रसूल अल्लाह की लानत की बद्दुआ में आ गए, लानु नाजिरा मंजूरा ही, अल्लाह क्या बात होगी। हाँ तो फजूर का मादा रखा है ना अल्लाह पाक ने, तो ये गुनाह का मादा बात नहीं, ये पिछली बात होगी, बात हो रही थी कि जिस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाता उसकी जो परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, चूंकि को तकवे को इस्तेमाल नहीं किया हमने, तो भाई अब तकवा मुश्किल लग रहा है, मुसीबत लग रहा है, बोझ लग रहा है, तो वह संभाले थे फिर इसलिए अब ऐसा लगेगा जैसे तकवा के ऊपर हमारे लकवा गिर गया, अजीब हजरत के अल्फाज थे कि ऐसा होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे तकवा पर लकवा गिर गया भाई, जैसे अल्लाह ना करे किसी के हाथ पे लकवा गिर गया तो फिर हाथ नहीं उठता, उसको उठा कह रहा है उठ ही रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाथ पे लकवा गिर गया, तो हजरत ने फरमाया तकवे को इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारे तकवा पर लकवा गिर चुका, इसलिए मुश्किल लगता है, वरना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई गुस्सा ही नहीं, वरना इस दौर में अल्लाह पाक क्यों ऐसे हमारे सामने मिसालें खड़ी करते,
जो अल्लाह वाले लोग हैं तकवे से रह रहे हैं, क्यों? उनके दिल नहीं है, उनके जज्बात नहीं है, उनके शहवत परस्ती उनके अंदर नहीं है। वो किस तरह से चलना है? क्या वो आसमान से उतरे या वो दायरा बशरियत से बाहर है? इसी दौर में ना ये हुज्जत है, ये हुज्जत है हमारी नहीं। अल्लाह पाक इन्हीं को खड़ा करेंगे। मुश्किल लग रहा था, तुमसे छोटा था, तुमसे कम उम्र था, तुमसे ज्यादा हसीन था, तुमसे ज्यादा पैसे वाला था, तुमसे ज्यादा उसको गुनाहों के मौके हासिल थे, ये नहीं कहा। इसने कोई गुनाह नहीं किया, तुम क्यों इतने ज्यादा हरामकारी में पड़े देते? अल्लाह हुज्जत तमाम करेंगे और ऐसे लोगों को हुज्जत बनाएंगे। हदीसों पाक में ये मज़मून आ चुका है। तो ग्राहे फरार नहीं है, इरादा नहीं होता असल में हमारा। तो तकवे का भाई इस्तेमाल करें, और तकवे की जो सिफत है वो सोबत से ही इंशाल्लाह हासिल होती है। तो सोबत अहलुल्लाह का एहतमाम है, फिर उसके बाद जिक्रुल्लाह पर दवाम है। जिक्रुल्लाह करें पाबंदी के साथ, और जिस अदब जिस और अजमत के साथ करना है जिक्र, वो बताया जा रहा है कि उस तरह से अल्लाह का जिक्र करें जिस तरह से बताया जा रहा है। फिर देखें, एक हफ्ता करके देख लें, आग लग जाएगी अल्लाह रसूल की इश्क की इंशाल्लाह। आंखों से आंसू रब होंगे, ऐसा लगेगा जैसे जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे, ऐसा अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, तुम अपना वक्त अपने रब को सही तरह से देकर तो देखो, अगर वो तुम्हारा वक्त ना बदल दे तो कहना, तुम्हारा वक्त ना बदल दे तो कहना। टाइम ही नहीं, बिजी पर्सन, बिजी मैन, क्या होगा फिर? और अल्लाह ने यहां तक फरमा दिया, रसूल अल्लाह सुस्तन के जरिए कहलवाई है। अल्लाह ने एक बात हदीस शरीफ है कि ए आदम के बेटे अच्छी तरह सुन लो। वही बात अल्लाह करके होशियार हाई अलर्ट बात बाद में बता रहे हैं अल्लाह पाक कि ए आदम के बेटे अच्छी तरह सुन लो, यानी तुझे भूल जाने की आदत है, अब जो बात बताऊंगा ये नहीं भूलना। ए आदम के बेटे एक बात अच्छी तरह सुन ले और याद रख, अगर तू मेरी याद से एराज करेगा, यानी जिक्रुल्लाह नहीं करेगा, तेरे पास टाइम नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो होगा क्या कि मैं तेरे सीने को गम और फिक्रों से भर दूंगा, मैं तेरे सीने को गम और फिक्रों से भर दूंगा, और मईशतन जन का तेरी जिंदगी को तल कड़वी कर दूंगा, चैन नहीं मिलेगा। देखिए आज इतने बड़े होगा ऐसा अल्लाह के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वही बात फिर घूम फिर के आती है, अल्लाह के जिक्र का एक होता है नाते जिक्रुल्लाह, गुनाहों के साथ जो जिक्र होता है जो हम करते हैं, ये भी मुबारक है, खुदा की कसम बहुत मुबारक। गुनाह कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अल्लाह का नाम तो ले रहा है, तो एक वक्त आएगा यही जिक्रुल्लाह का नूर उसे कामिल जिक्रुल्लाह करने के लिए तौफीक देगा, जब गुनाहों से बिल्कुल उसकी छुट्टी हो जाएगी। ये जिक्रुल्लाह की तो पार्ट होगी जिससे गुनाह छूटेंगे। तो ये जो अल्लाह पाक जो फरमा रहा है ना, मेरी याद से ही तुम्हें चैन मिलेगा, या हम सीने में और गम और फिक्रों से भर देंगे, जो हमारा जिक्र अगर नहीं करोगे तो लोग इस पर भी कह देंगे जिक्रुल्लाह कर रहे हैं तो भी हमारे सीने में गम फिक्र है ना, बात ये। लेकिन मशाइख और मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये कामिल जाकिरीन के लिए बात की जा रही है कि तुमने जबान से अल्लाह अल्लाह कर लिया तो अब आंखों का भी जिक्र करो, जब औरत आ रही हो नजर नीची करो, ये जिक्र अकबर है। सिर्फ जबान चलाने का नाम अल्लाह अल्लाह नहीं है। ये नहीं कह रहा अल्लाह पाक तुम हराम काम करते रहो, गंदे काम करते रहो, जबान से अल्लाह अल्लाह करते रहो और तुम चैन पा जाओगे। मतलब जिक्र की हकीकत को समझे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जिक्रुल्लाह ऐसा जबान से भी करना, ये तो खाली जिक्र लिसानी कहलाता है, एक होता है जिक्र कल्बी, और फिर उसके बाद आदमी की उस जिक्र की जो होती है तरक्की होने शुरू हो जाती है। फिर आंखों का जिक्र भी है, आंखों का जिक्र क्या है कि गलत जगह निगाह नाट जाए। कानों का जिक्रुल्लाह ये कि गाने नहीं सुनने, मौसीकी नहीं सुननी मोबाइल पे, ये कानों का जिक्रुल्लाह है। फिर जबान चलाने का नाम अल्लाह अल्लाह करने का नाम जिक्रुल्लाह नहीं होता, ये अधूरा है, ये इनिशियल स्टेज है, बिगिनर लेवल है, ये स्टेज वन है। शुरुआत तो जिक्र लिसानी से होती है, लेकिन अब इसको बढ़ाना है। तो जब आदमी के जिस्म से जिस्म के तमाम आवाज जब अल्लाह की फरमाबरदारी में लगते हैं, टांगे गैर शरीय तकरीबात में नहीं जाती, रसूल अल्लाह ने मना फरमाया ऐसी मजलिस जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहां मत जाओ, तो फिर अपनी टांगों के जरिए वह हराम कामों की जगह नहीं जाता, तो ये टांगों का जिक्र उसने अदा कर दिया। तो जिस्म का एक एक आजा सिर्फ अल्लाह की अताद अख्तियार करना है, तो ये कहलाता है कामिल जिक्रुल्लाह। उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं मेरी याद से ही तुम्हारे दिलों को चैन मिलेगा और तुम्हारे सीने में गम और फिक्रे सारी निकाल दूंगा मैं। लोग समझ रहे हैं यार मैं तो जिक्रुल्लाह नहीं कर रहा हूँ, 50,000 हराम काम कर रहा है वो देख नहीं रहे, अब खाली जबान से जिक्र लिसानी से चाह रहा है सब कुछ हल हो गया। भाई मुबारक है, आगे भी तो बढ़ो ना, पहले 50,000 कमाते थे रोते यार अभी तक वही इनकम बढ़ नहीं रही मेरी, तो तकवा भी तो बढ़ाओ, दूसरी चीजों को तो जिक्रुल्लाह पे भी लगाओ, जिक्रुल्लाह की बड़ी बरकत होती है। अभी पिछले चंद साल पहले इस्लामाबाद जाना हुआ, वहां पर डहरिया टाउन में जाना हुआ, वहां करीब में कोई बहुत खूबसूरत झूम था कोई, तो वहां जाना हुआ झूम में, तो वहां बबर शेर थे, व्हाइट लाइन थे, बहुत हसीन बहुत खुशवार बबर शेर थे। तो बहरहाल उनके करीब ये पता नहीं क्या दिल में आया, मैंने ऐसी शेर बैठे हुए थे ऐसी जमाइया ले रहे थे, मैंने क्या जमाइया ले रहे हो, शर्म नहीं आती, बताओ जिक्रुल्लाह कब से क्यों नहीं किया, मरना नहीं है क्या, बस ये कहना था। वो शेर सारे उठ के खड़े हुए और फिर उन्होंने अल्लाह अल्लाह ऐसी धारे लगाना शुरू करी, मुख्तलिफ पिंजरे थे, तो उन्होंने जब अल्लाह अल्लाह करना शुरू किया तो दूसरे शेरों ने जब सुना उन्होंने फिर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, तो वो एक अजीब ही दरो दीवार हिल गया। भारी बात है, शेर बब्बर जब मिलकर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह अल्लाह इस तरह जो जिक्रुल्लाह किया सबने खड़े होकर, तो सारे हैरान हो गए, अब सब मुझे घूरने लगे यार ये क्या कर दिया बंदे, मैं जल्दी भागा, मैंने कहा ये लोग पकड़ लिया यार ये क्या कर दिया उन्होंने, तो मैं मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मैंने तो ऐसे ही कहा था उनसे मजाक में भाई कब से अल्लाह का जिक्र नहीं हो, तो भाई और किस दर्द से अल्लाह अल्लाह कह के बात शुरू की, आंखों से आंसू बहने लगे, उनकी आंसू टपकने लगे ये, और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हर जमीन और कायनात में, जमीन और आसमान में कायनात में जो भी जीरो है, अल्लाह ने फरमाया हमने उसको उसकी तस्दीहात बताई और हर शख्स अपने हर जीरो उस तस्दीह को अदा कर रहा है, कोई चिमटी दिए गए तो उसको अपना जिक्र अपना विर्द मालूम है कि अल्लाह ने मुझे ये दिया हुआ है, आपको पता है ये तो कोई ऐसा जीरो नहीं है जो अल्लाह का जिक्र ना कर रहा हो, और अल्लाह ने फरमाया तुम उनकी तस्दीहात को नहीं जानते, हर शख्स हर जीरो को पता है, चिमटी तक कर रही है अल्लाह का जिक्र, एक हम होते हैं फजर पड़े हुए सो रहे होते हैं बड़े किया किया जिक्रुल्लाह नहीं किया, सूरज चांद तक अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये दरो दीवार ये पेड़ ये दरख्त ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हर जीरो अल्लाह का जिक्र करती है, सबको अपनी तस्बीहात का इल्म है, पता है ये शेर बब्बर जानवर सब अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन बाद जब उनमें भी गफलत हो जाती है जानवरों में, तो भाई ये कुछ समझ में आई बात, बहुत सी बातों का जवाब मिल गया, लोग कहते हैं कुरान जिक्र कर रहे हैं दिल के गम फिक्रे खत्म नहीं हो रही, भाई अगर फरमाते थे अल्लाह के बातों पर शक मत करो, अपने तखबे पर शक करो, कहीं तुम्हारे तखबे पे लकवा गिरा हुआ, ऑडिट करो चेक एंड बैलेंस करो, अल्लाह ने जब फरमा दिया वो मई यत्तकिल्लाह यजल्लहु मखरजा, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा गुनाहों को छोड़ेगा और मुसीबत से निकाल देंगे, अल्लाह तो ये कह रहे हैं, अगला कह रहा है यार मैं तो तकवे से भी ना रहूं मेरी परेशानी नहीं जा रही, अरे भाई अल्लाह पे मत शक करो, देखो तुम्हारे तकवे में कोई गड़बड़ है, कुछ काम अच्छे कर रहे हो लेकिन बड़े बड़े कबीरा गुनाह ऐसे भी होंगे जिसमें तुम अभी मुलव्वज़ हो, सही है भाई, तो जब अल्लाह का वादा है तो शक ना करे आदमी, तकवे पर शक करे बस, उसके बाद उस गुनाह को अपना मुहासबा करे, असेसमेंट करे, पर्चे पे लिख ले, आसान तरीके की आपने इसलिए डायरी बनाए उसमें लिख के मैं कौन कौन से गुनाह कबीरा में उतर रहा हूं, उसके एक लिस्ट बना ले, और जो सबसे ज्यादा कभी भारी जिक्रुल्लाह हो और समझता हो कि बहुत ज्यादा मेरे अंदर इस गुनाह का असर जेरे असर रहता है इस गुनाह के, तो उसकी सबसे पहले इसलाह कराए, तो जैसे जैसे इसलाह कराएगा, जैसे जैसे हमारी जिंदगियों से गुनाह कबीरा निकलेंगे वैसे वैसे अल्लाह के कुर्ब का रास्ता सफर शुरू हो जाएगा, फिर वो चीजें महसूस होंगी और वो होगा जिसको आदमी जबान से नहीं बयान कर सकता। अल्लाह पाक इन सब बातों को समझने की अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आखिर में हजरत पाक हमें इरशाद फरमाते थे कि ये पांच अमल जो भी कर लेगा इंशाल्लाह मरेगा नहीं उस वक्त तक जब तक अल्लाह पाक उसको अपनी विलायत नहीं अता फरमाएंगे, यानी बहुत बड़ा उसे वरीदा बनाएंगे, और इन पांचों अमल का ताल्लुक नवाफिल या सुन्नत गैर मौकदा से नहीं बल्कि सुन्नत भी है फर्ज भी है और वाजिब भी है, यानी ऑप्शनल नहीं है ये चीजें कंपलसरी है, तो कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करें, कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करें, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहम हाक और हलक से निकाली, हम के माने तारीफ, अगर हमने दो चश्मी है से यानी सीने से आवाज निकाल दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो उसका मतलब हो जाएगा तमाम बुराइयां अल्लाह की नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, कहां तारीफ और कहां बुराई, कल माने कल दो नुक्ते वाला काफ हलक से आवाज निकाल, कल माने दिल और खड़े काफ से पढ़ा कल माने कुत्ता, तो कहां दिल कहां कुत्ता, तो मतलब कुछ के कुछ हो जाते हैं, तो डेढ़ दो महीने की मेहनत है, वो सालों की मेहनत नहीं, हफ्ते में दो तीन दिन भी अगर किसी कारी साहब से पढ़ लिया नूरानी फायदे से तो इंशाल्लाह ताला तजवीद दुरुस्त हो जाएगी, और एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, ठोरी के नीचे से दाएं से बाएं से, और चारों इमामों का इजमा किसी का अख्तलाफ नहीं है कि एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और अगर चावल के दाने के बराबर भी अगर एक मुट्ठी से दाढ़ी कम है तो ऐसी दाढ़ी का रखना और बढ़ाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली और दोस्त नहीं हो सकता। मुझे बिल्कुल बारीक करनी है, एक मुट्ठी दाढ़ी बता रहा हूँ, बाद में एक मुट्ठी दाढ़ी भी रखते हैं और एक मुट्ठी मूंगी, तो भाई एक मुट्ठी मूंगी और मुझे बिल्कुल बारीक करनी है, और बड़ी मुझ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा, वो मेरे हौले कौसर के करीब नहीं, जन्नत में एंट्री बंद, नंबर एक। नंबर दो, मुनकर नकीर जब कब्र में आएंगे तो गुस्से की हालत में आएंगे, तो कब्र मुनकर नकीर तो गुस्से की हालत में। नंबर तीन, उसे कब्र में अजाब दिया जाएगा, लोगों को ये मसला ही नहीं पता, लोग कहते हैं जी सही कह रहे हैं मुझे बड़ी हो तो खाना पीने में मकरूह, अरे कराइए तो मकरूह तो बहुत मामूली चीज है या खतरनाक चीजें वही से आ रही है, पहले इससे तो डरो। अगर मुझे रखने का अगर शौक है किसी को बहुत, तो उसका तरीका ये कि भाई होंठ का ऊपर का किनारा ये आदमी खुला रखे, होंठ के किनारे के ऊपर ऊपर मुझे रख ले तो जायज कर जाए, तो अजाब की वजह से बच जाएगा। हाँ, होंठ के किनारे के ऊपर अगर चंद बाल भी आ गए तो बड़ी लंबी मुश्किल हुकुम में ये मांगना आ जाएगा। तो हजरत फरमाते थे रहमतुल्लाह का, यूनिफॉर्म में रहो, एक मुट्ठी दाढ़ी, टखनों से ऊपर पहुंचे, मुझे बिल्कुल बारी, अगर बुलावा आ भी गया तो उम्मीद है रसूल अल्लाह की तिबा की बरकत से अल्लाह मगफरत फरमा दे। एक शायर फरमाते थे ना, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आये हूँ, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आये हूँ, हकीकत तू उसको कर दे मैं सूरत लेकर आया हूँ। और इसी तरह तीसरा मले मा मिनल का बैनी मिले दिवारे फिर नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मर्दों के लिए भाई हदीस, ये मर्द जब खड़े हों, लोग जब खड़े हो चल रहे हो, खड़े हो चल रहे हो, टखने खोल के रखना वाजिब है, आप बैठे लेटे हैं तो छुप जाए। और दूसरी हदीस शरीफ है, आपने इरशाद फरमाया उस शख्स की तो नमाज ही कबूल नहीं होती जो नमाज के दौरान अपने टखनों को छुपा के रखता है। तीसरी खतरनाक वईद, आपने इरशाद फरमाई मौत तक उस आदमी से अल्लाह पाक मोहब्बत नहीं रखते जो अपने टखनों को छुपा के रखता है, मौत तक अल्लाह की मोहब्बत से महरूम रहेगा। आज अंग्रेजों की मोहब्बत ने बहुत से लोगों को देखते हैं कि हाफ शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं, चड्डे पहने हुए होते हैं, नेकल पहने होते हैं, जबकि घुटना तो छुपा के रखना है तो फर्ज और वाजिब है, घुटनों से ऊपर चड्डे पहने हुए होते हैं या शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं, घुटनों से थोड़े से नीचे होते हैं, उसमें स्टाइल नजर आ रहा है, लेकिन टखनों से ऊपर एक इंच करते हुए उनको मौत आती है कि शर्म आ रही है, लोग मुझे अकीर समझेंगे, बोलना नहीं बोलूंगा। अब यहूदियों ने सारा के चक्कर में पड़ के उनके स्टाइल अख्तियार किए तो आगे नंगे हो गए, उसमें शान नजर आ रही है, यहीं से तो पिट रहे हैं हम लोग, तो सुनना तो वो हकीर समझते हैं, यहूदियों ने सारा के जो फैशन होते हैं उनको अपनी इज्जत और अपने स्टाइल का जरिया समझते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा चुके हैं जो जिस कौम की मुशाबियत अख्तियार करेगा उसी के साथ उसका अशर होगा। नाराजगी आप सल्लम की, मैं तो तुम्हें प्यारा लगा ही नहीं, मैं तो तुम्हें अच्छा लगा ही नहीं, मेरे पास क्या लेने आ रहा, जाओ जिनकी तुमने नकल करी, जिनसे प्यार था, आदमी उसी की तो नकल करता है जिसको अपने से अपर क्लास को समझता है, जिससे मुतासिर होता है, किसी को कोई हकीर कमतर समझता है तो उसकी नकल नहीं करता। आज कितने लोग हैं बुढ़े हो गए, मर गए, कब्र में पहुंच गए, डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं छोड़ा, भाई शरीर दूर है तो ठीक है बैठ जाओ। चौथा मन नजरों की हिफाजत करें तमाम नामहरीन से, कुरान की आयत है कुल मुमिनीन अक्सारीन व या कुल फुजूम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाग निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। रसूल अल्लाह ने लानत की बदुआ दी उन लोगों को जो बदहजी करते हैं, और खवातीन के ऊपर भी जो हर एक के सामने अपना चेहरा खोल कर आ जाती है, दोनों पे लानत की बदुआ, नजरों की हिफाजत करें। और पांच नंबर, दिल को पाक साफ रखें गंदे ख्यालात से, क्योंकि मराद का वजीरा दिल में ही पहले आता है, अल्लाह के कुरब का ये दिल नहीं है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, और इन पांचों माल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ नमाज पढ़ तो जहाँ ताल्लुक कायम कर ले, इंशाल्लाह थोड़े ऐसे में पांचों माल की तौफीक हो जाएगी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب كريم يا رحمن الرحيم جو بھی بولا گیا سنا گیا اس کو بھی بعد میں قبول فرما لے اے اللہ کے نے سننے میں غلطی ہوئی تو شان رحمت سے بخش دے معاف فرما دے ہمارا دل بیٹھنا تو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں اللہ اس بیٹھنے میں قبول فرما دے ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ہم کو صحیح طرح سے ڈھنگ سے اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو کی جائے فاجات ہیں اللہ تم جاننے والا ہم سب کی جائے فاجات کو پورا فرما دے جو بھی ہیں محروم نہ جائے دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی جانوں میں عزت عمروں کی حفاظت فرما یہودیوں کو اور اس کے مددگاروں کو جلد از جلد تباہ برباد کر دے سب ہستی سے مٹا دے غلط کا نشان بنا دے تمام بطن مسلموں کی جانوں میں عزت عمروں کی حفاظت فرما अल्लाह मेरे वाले साहब की और मेरे प्यारे मुशीन की और हमारे जुम्मन मरूमिन की कुल मुमिनीन मुमिनात की कुल जन्नात की सबकी कामिल मगफरत फरमा, सब को जन्नत फिरदौस में आला शाला मुकाम नसीब फरमा, सबकी नजरों को सबकी कब्रों को नूर से भर दे। اللهم آمين سمعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم